खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखना शुरू करें, चंद लम्हों के लिए अपने अपने दिल की हालत का जायज़ा लेंगे। हर तरह की सोचों को, ख्यालों को जो अबलीस की तरफ से बहुत दफ़ा हमें खुदावंद की कलाम की सच्चाइयों को कबूल करने से और समझने से रोकती हैं, उन तमाम तस्वीरों को खुदावंद यीशु मसीह से कहेंगे कि खुदावंद उन सब को बांध और फिज़ा पर, इस जगह पर, हमारी रूहों पर, दिलों और ख्यालों पर तेरा ही कब्ज़ा, तेरा कंट्रोल हो। सो आए हम खुदा के तख्त के सामने चंद लम्हों के लिए हाज़र हों ताकि उससे ज़िंदगी की रोटी हासिल कर सकें। खुदावन खुदा, तू हमारा रहनुमा है, तेरा कलाम हमारे लिए नूर है, तेरा कलाम हमारे लिए रोशनी है, तेरा कलाम हमारे लिए हौसला है, तेरा कलाम हमारे लिए तरबियत है, तेरा कलाम सच्चाई है। और इसी सच्चाई के वसीला से हम सब को इबलीस के जुओं और बंधनों से तू आज़ाद करता है। खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी सीखें उसमें तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह नाम जाना जाए, पहचाना जाए और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में उसके नाम को जलाल मिले। उसी के मुकद्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, तीसरा बाप, उसकी छठी आयत से आठवीं आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल उस भेद के बारे में, उस मुकाशवा के बारे में जो उसे हासिल हुआ, उसके बारे में बात करता है तीसरे बाप में। फिर वो बात करता है खुदावन खुदा के फजल और सच्चाई के बारे में, जिसके वसीला से उस बड़े गुनाहगार को खुदावन ने अपने रहम की दौलत से क्या बना दिया, गुनाहगार से उसे मुकद्दस मुकद्दसीन रसूल और अपना अलहदा किया हुआ बंदा बना दिया। और इसीलिए पालूस रसूल छठी आयत में कहता है, यानी ये कि मसीह यसु में गैर कौम खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं, और खुदा के उस फजल की बख्श से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। मुझ पर जो सब मकदसों में छोटों से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हमने कल देखा था कि पालूस रसूल अपनी ज़िंदगी में खुदा का खादम होते हुए उन तमाम बातों को जो उसे सामना थी, उन तमाम हालातों को जिनमें से उसे गुजरना पड़ा, उन तमाम फरेबियों का जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, उन तमाम ख़तरों का जिनमें उसने ज़िंदगी गुजारी, और उन तमाम दुखों का बयान करता है जो उस पर आए। किस वजह से? इसलिए नहीं कि उसने किसी की चोरी की, इसलिए नहीं कि उसने किसी से झूठ बोला, सिर्फ एक वजह से, और वो क्या था? मसीह की खातर उसकी मोहब्बत को दुनिया तक पहुंचाना। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया नातफाकी से, ये दुनिया नफ़रत से, ये दुनिया हसद से, ये दुनिया लड़ाई और झगड़े से, बेइत्मीनानी से, बेबरकती से भरी हुई है। और ये कब हुआ? जब आदम ने गुनाह किया तो उस गुनाह के बायस ये ज़मीन, ये दुनिया गुनाह से पुर हो गई, ये दुनिया में फसाद, लड़ाई, झगड़ा, हसद और हर तरह की वो बात जो खुदा के मोहब्बत के ख़िलाफ़ हम कह सकते हैं वजूद में होना शुरू हुई, वजूद में आ गई। सो ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अगर मोहब्बत ना होती, अगर खुदा का तर्स ना होता ये तो कब की बर्बाद हो जाती। और ऐसा ही इब्तदा में हुआ जब आदम और हवा खुदा के नाफरमान हुए और उनके बेटों में से एक ने, काहिन और हाबल की कहानी से वाकिफ हैं कि हाबल ने अपने भाई काहिन को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो तकरीबन 900 साल तक उनका बाप आदम जीता रहा, 930 साल गालबन, और फिर नस्ल दर नस्ल बात चलती रही। और नूह के ज़माना में हम देखते हैं कि बदी इतनी बढ़ गई, नफरत इतनी बढ़ गई, गुनाह इतना बढ़ गया, नाफरमानी इतनी बढ़ गई कि खुदा ने उस वक्त की तमाम दुनिया को क्या किया, पानी से बर्बाद कर दिया। और सिर्फ एक खानदान बचा जिसमें 8 लोग थे, और वो नूह का खानदान था। और उस गुनाह के बायस जो कि खुदा की मखलूक, खुदा की बनाई हुई ज़मीन जो कि सुकून से पुर थी, वो क्या ठहरी, लानती बनी। सो जिस ज़मीन पर, जिस माहौल में, जिस वक्त में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त को क्या कहा गया है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, आखिरी वक्त। तो पालूस रसूल उन हालातों में से गुजरता हुआ बयान करता है ये किस लिए है, गुनाह के बायस। आज भाई भाई से नफरत करता है तो ये किस लिए है, गुनाह के बायस। आज इंसान खुदा का नाफरमान है तो ये किसके बायस है, उस गुनाह के बायस जो इब्तदा में हुआ। आज खून खराबा है तो ये किस लिए है, उस गुनाह के बायस जिसे नाफरमानी कहा गया। इंसान से पहले फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने नाफरमानी की, उसके बायस ज़मीन पर नाफरमानी हुई, और ज़मीन का एक ही मालक और खालक है जो इसे फिर दोबारा नया बनाएगा। तो अगर आज हम किसी दुख, मुसीबत, परेशानी, मसले और दूसरी बातों में से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या है, हमारा एक मुखालफ है जिसका नाम शैतान है, हमारा एक और मुखालफ है जिसका नाम दुनिया है। और वो दुनिया क्या करती है, अपनी मनमानी करती है, खुदा की नहीं। हमारा एक और मुखालफ है, और वो क्या है, हमारे अंदर बसी हुई वो पुरानी फितरत जिसे गुनाह आलूदा फितरत कहा गया है, जिसे पुरानी इंसानियत कहा गया है, जिसे वो जिस्मानी ख्वाहिश करने वाली रूह कहा गया है जो खुदा के खिलाफ बात करती है। इसीलिए पालूस को उन दुखों में से गुजरना पड़ा, इसीलिए हम दुखों में से गुजरते हैं। तो पालूस रसूल इसीलिए कहता है कि इन तमाम हालतों के बावजूद, हमने जैसे देखा था कल पहले करंथियों के चौथे बाब की, हमने जो आयात को देखा था वहां पर पालूस रसूल अपने बारे में बयान करता है कि उनने उसे किन हालातों में से गुजरना पड़ा, कौन कौन सी बातों का उसे सामना हुआ। वो कहता है कि हम खुदा के रसूल हैं और इस दुनिया में उन लोगों की मानद है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, जिनको सजाए मौत सुना दी गई हो। फिर वो कहता है कि हम आसमान के फरिश्तों और दुनिया और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। जब कोई मसीह का खादम बनता है तो मसीह को अपनाता है तो उसके लिए मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां बहुत ही जरूरी बन जाती हैं, क्योंकि मसीह की खिदमत, मसीह के साथ चलना क्या है, दुखों और मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता है। लेकिन जो खुशी की बात यह है कि पलूस कहता है कि ये सब आरजी है, ये सब आरजी है, क्योंकि उसे पता है कि जो दुनिया बिगड़ी हुई है, जो नफरत से भरी है, इस नफरत से भरी हुई दुनिया को हम किस तरह जीत सकते हैं, मोहब्बत से। लड़ाई से भरी हुई दुनिया को हम किस तरह जीत सकते हैं, सुला से। हसद और बुगज से भरी हुई दुनिया को हम किस तरह जी सकते हैं? इत्मीनान के पैगाम से, खुशी के उस पैगाम से कि हमारे गुनाह का, तुम्हारी बेतमनानी का हल किस में पाया जाता है? यीशु मसीह में। सो पालूस रसूल जब कहता है 7वीं आयत में, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से, खुदा के उस फजल की बख्शिश से, यानी कि खुदा के उस फजल के तोहफा से। बख्शिश का मतलब तोहफा है, किसी पर करम या किसी को कुछ बख्श देना। और फजल का मतलब है सादा तौर पर किसी पर करम करना, किसी पर रहम करना, किसी पर शफकत करना, किसी पर मेहरबानी करना। तो दूसरे लफ्जों में पालूस कहता है कि मैं खुदा की मेहरबानी के उस तोहफा से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। पालूस रसूल अपने आप को जानता था कि वो कौन है। आए मेरे साथ देखें कि पालूस रसूल क्यों इस खुदा के फजल और ताकत को बहुत ज्यादा वो सराहता है, इज्जत देता है, उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसका फजल ही उसे जोर बख्शता है जब वो कमजोर होता है। उसका फजल ही है जो उसे जब वो नाकाम होता है तो माफ करता है। तो पालूस रसूल अपनी जिंदगी में कहता है, मेरे साथ निकालें, पहला तमोथियस, उसका पहला बाप, उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। ये वो हवाला है जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लिखा हुआ था। पहला तमोथियस, उसका पहला बाप, उसकी 12वीं आयत से। ये वो बयान है जो पालूस का ऐसा बयान है जो आज भी जिंदगियां बदल देता है। सुनने में आया है कि लाहौर या साहिवाल या किसी और जगह पर हॉस्पिटल में ये बयान लिखा हुआ था कि पालूस की तरफ से ये उसका बयान है। तो किसी गैर कौम ने उस बयान को पढ़ा तो वो उसी वक्त मसीही हो गया। उसी वक्त उसने मसीह को कबूल कर लिया जब उसने पालूस के ये अल्फाज सुने। गौर से सुने, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकरर किया। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेदीनी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह में है बहुत ज्यादा हुआ। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसू गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि मसीह यसु मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्बल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहद खुदा की तम इज्जत और तमजीद अब्दुलबाद होती रहे, आमीन। इस बयान ने उस बड़े आलम को जिसने ये बयान एक दीवार पर लिखा हुआ हॉस्पिटल में पढ़ा, तो उसको उसने चकनाचूर कर दिया कि ये पालूस, ये रसूल होते हुए अपने बारे में कहता है कि खुदा का रहम और फजल मुझ पर इसलिए हुआ क्योंकि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। और उसकी जिंदगी बदल गई। सो खुदा का फजल जो आज 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 आप पर हुआ है, पालूस पर हुआ है, वो बेफायदा नहीं हुआ। पालूस क्यों अपने बारे में लिखता है? ताकि लोग उसके वसीला से जाने कि वो दूसरों के लिए नमूना बने। सो सवाल ये है कि पालूस कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूं जिसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकरर किया। खुदा ने हमें इसलिए मुकरर किया है कि हम ईमानदार हैं, हरगिज नहीं। खुदा का रहम इसलिए हम पर हुआ क्योंकि हम बहुत ही जबरदस्त हैं, हरगिज नहीं। हम कमजोर, लाचार, लापरवाह और टूटे हुए बर्तनों की मानंद थे, इसलिए खुदा ने हमें दयानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकरर किया है। और पालूस लिखते हुए कहता है, बेशक मैं पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, मसीहियों को मारने वाला, उनकी बर्बादी में शामिल था, उनके घरों को तबाह करने वाला, उनके नौजवानों को मारने वाला था, लेकिन वो सब काम मैंने नादानी में किए, यानी कि बेवकूफ़ी में किए, जब मैं ना समझ था, जब मैं रूहानी तौर पर बच्चा था, वो कहता है। सो पालूस रसूल हमारे लिए नमूना बना। पालूस रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल है, यीशु मसीह का ऐसा खादम कि जिसके वसीला से बहुत से लोग बरकत पाते हैं, कि अगर वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। सो सवाल ये है कि हम किस तरह का। पालूस ने ये नमूना छोड़ा कि वो खतरों में, गैर कौमों से, समंदरों में, डाकुओं में, सर्दियों में, हर तरह के कामकार में, हर तरह की मेहनत मशक्कत में वो सबसे आगे नज़र आता है। कैद खाना में सबसे ज़्यादा वो कैद नज़र आता है। ठुकराए जाने में उसकी बहुत सी बातें नज़र आती हैं कि उसे ठुकराया गया। वो अपने आप को रसूल होते कहता है, सबसे छोटों में से छोटा, फिर वो कहता है सबसे बड़ा गुनाहगार। वो खुदा के फजल की दौलत को समझता है, उसकी जिंदगी मिसाली है। उसने नमूना छोड़ा अपनी जिंदगी से। सो आज सवाल यह है कि हम किस तरह का नमूना छोड़ेंगे, क्योंकि पालूस का बयान बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। हमारे लिए जो बातें लिखी जा रही हैं वो आसमानी किताब में लिखी जा रही हैं। मुकाशवा की किताब के मुताबिक ईमानदारों का जब हिसाब होगा, जब उनको अनाम दिए जाएंगे, जब उनको उनके काम का अजर मिलेगा, तो यीशु मसीह उस किताब को खोलेगा जो जिंदगी की हयात जो किताब है, जो बर्रे की किताब है। दो किताबें हैं, एक किताबे हयात जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया उनका नाम लिखा हुआ है, एक दूसरी किताब जिसमें उन गैर कौमों का, उन लोगों का जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया, उसका कोई जिक्र नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ईमानदारों से पूछेगा। सो आज के दौर में हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह का नमूना छोड़ेंगे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यीशु मसीह हमसे जो सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें बरकतें, नेमतें, हर तरह की कुव्वत, ताकत, सब कुछ बख्शा, तुमने उससे क्या किया? और ये हर एक से सवाल होगा। वहां पर किसी ईमानदार को ये नहीं कहा जाएगा कि आप चले जाओ और मैं रह जाऊं, क्योंकि हमारे काम के मुताबिक यीशु मसीह हमें अजर देगा। इसलिए पालूस कहता है कि मैं मुझ पर इसलिए रहम हुआ कि मैं मसीह में बड़ा गुनाहगार हूं, और खुदावंद अपना तहम्बल मुझ पर जाहिर करे ताकि लोग हमेशा की जिंदगी पाएं और मेरी जिंदगी से नमूना हासिल करें। सो हम किस तरह का नमूना देते हैं, आज इस सवाल को सोचें कि खुदावंद मुझे कैसा नमूना होना चाहिए, अपने घर में, घर से बाहर, अपने कारोबार में, कहीं भी हो, कि मैं मसीह के लिए कैसा नमूना हूं। क्या मैं मसीह को जाहिर करता हूं या मसीह को छिपाता हूं? ये सवाल आपके और खुदा के दरमियान है, क्योंकि इस दुनिया के भटके हुए लोग, नाउम्मीद लोग, जो ऊपर से खुश लेकिन अंदर से दुखी, खौफ से भरे हुए, बेतमनान हैं, ना अमीद हैं, वो अमीद का पैगाम ढूंढते हैं। सो आए हम खुदावंद के जुर झुकें और अपने अपने जिंदगी में से देखे कि हम किसी के लिए उम्मीद, हौसला या कोई और पैगाम दे रहे हैं जो कि नाउम्मीदी का है। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए। हम सबको छू, बड़ी बरकत दे और ये कलाम बेतासीर ना लौटे। खुदा खुदा, तूने कहा है कि तेरा कलाम तेरी मर्जी को पूरा करता है। हम सबको हिकमत और दनाई बख्श के हम मसीह की तरह खुदाऊं खुदा तेरी मर्जी को पूरा करें, पालूस की तरह तेरी मर्जी पर चलें। और खुदाऊं खुदा, हम अपनी ज़िंदगी में अपने पड़ोसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।